शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का अपने ही घर में अपनों के द्वारा हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच परम आदरणीय आशा दीदी जी उपस्थित हैं, जो कि पिछले 35 वर्षों से इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए अनेकों का जीवन संवारा है, अनेकों के जीवन में खुशहाली लाई है। दीदी सोशल विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिनके द्वारा अनेक समाज के वर्ग समाज में जाकर के अनेक आत्माओं को परमात्मा का दिव्य संदेश दिया है और आज हमारे सम्मुख बैठी है। ऐसी दीदी का हम सब करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं और हम सब उनके वक्तव्य का लाभ उठाएंगे।
ओम शांति। अति प्यारे बाप दादा के सभी प्यारे प्यारे बच्चे, बाप दादा का आवाहन पर, बाप दादा के निमंत्रण पर सभी दौड़ लगा करके बाबा के घर में पहुंच गए हैं। ये सिद्ध करता है कि हमारा बाबा से कितना अधिक स्नेह है, बाबा पर कितना निश्चय है। उस निश्चय का, उस प्यार का प्रमाण हमारी यहाँ की उपस्थिति होती है। बाबा बच्चों का बाहें पसार कर इंतजार करते हैं और कहते हैं, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ और मेरी बाहों में समा जाओ। बाबा इतना प्यार से हर रोज बच्चों को मीठे बच्चे कह याद करते हैं और सभी प्यारे बच्चों को अपनी भुजाओं में, स्नेह की भुजाओं में समा लेते हैं। हम सभी रूहानी यात्रा के, रूहानी सफर के यात्री हैं। बहुत सुंदर हम सभी का लक्ष्य है, लक्ष्य इतना सुंदर कि हमने मनुष्य से क्या बनना है, देवता बनना है। दुनिया में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य रखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की पढ़ाइयों को पढ़ते हैं और पढ़ाई को पढ़कर अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, उसी लक्ष्य के अनुकूल वो अपनी पढ़ाई पढ़ता है या अपने कदम उसी अनुसार रखता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, तो सोचता है मेरे आसपास में अच्छा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, जहाँ मेरे को टाइम भी कम देना पड़े, पढ़ाई भी अच्छी हो जाए। और उसके लिए जो भी उसे श्रम करना है, धन खर्च करना है, मेहनत करनी है, उसके लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना है। यदि किसी का लक्ष्य इंजीनियर बनना है, वह भी किस प्रकार का इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या सिविल इंजीनियर बनना है या कंप्यूटर साइंस में आना है, जैसा लक्ष्य व्यक्ति रखता है फिर उसी की डेप्थ में जाता है, उसी के लिए सब कुछ न्योछावर करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य इंजीनियर बनना है। किसी अन्य का लक्ष्य केवल व्यापार करके धन कमाना है तो उसकी बुद्धि व्यापार में ही जाती है। जिस प्रकार का वो बिजनेस करना चाहता है, जहाँ पर भी जाएगा उसे वही चीज नजर आएगी, उसी की क्वालिटी को वो देखेगा, उसी के अनेकों प्रकार वो देखेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य उसी फील्ड द्वारा धन को अर्जन करना होता है। हम इस बात को देखते हैं, संसार में जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है उसी लक्ष्य के अनुसार उसके कदम उठते हैं। अब हम अपने आप को देखें, हमारा लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना है और उसमें भी हम ये चाहते हैं कि हमारा योगी जीवन बन जाए। लक्ष्य हमारा वर्तमान का क्या, योगी जीवन बन जाए, जिसे बहुत सरल शब्दों में हम कहते हैं मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति और लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। मार्ग क्या, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति और लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। तो शुद्ध प्रवृत्ति के द्वारा हमारा योगी जीवन बन जाए, ये हमारा वर्तमान का लक्ष्य है। और हम इस रूहानी यात्रा के राहियों को ये ज्ञान है कि हमारी पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है और इस पढ़ाई में मुख्यतः चार विषय हैं। सभी जानते हैं कि हमारी इस पढ़ाई के मुख्यतः चार विषय हैं और हर विषय में पास होना अनिवार्य है। 1996 तक जब हम पहले विषय को लेते हैं तो ज्ञान की बात कहते हैं, पर कैसा ज्ञान, ज्ञान तो बहुत प्रकार का इस दुनिया में, लेकिन हमारा विषय ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान को सुनना, श्रवण करना, ईश्वरीय ज्ञान का पठन पाठन करना, विचार सागर मंथन करना और उसी ज्ञान स्वरूप अपने आप को चलाना, ये हमारा पहला विषय है। दूसरा विषय, जब हम योग कहते हैं, योग भी दुनिया में बहुत प्रकार के हैं। हम किस योग की बात करते हैं? बाबा ने हमें बताया हमारा विषय है सहज राज योग, रहस्यों भरा योग, ऐसा योग जिससे हम कर्म इंद्रियों के राजा बन जाएं। और तीसरा विषय दैवी गुणों की धारणा है, वह देवताई गुण, वो दिव्य गुण, वो डिवाइन वर्चूज मेरे जीवन में दिखाई दे, मेरा जीवन उन गुणों के प्रमाण रहे, जीवन में गुण समाए हुए दिखाई दे, ये है पढ़ाई का विषय। और चौथा रूहानी सेवा। सेवा भी बहुत प्रकार की होती है, यूं हम किसी न किसी प्रकार की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं, लेकिन बाबा जिस सेवा की बात कर रहे हैं वह है रूहानी सेवा। और इन चारों ही विषयों में पास होना अनिवार्य है, ये भी बाबा ने हमें समझाया है। और बाबा ने हमें ये बात बार बार याद दिलाई है कि चारों विषयों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यूं हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो चारों का तीनों का बेस है वह योग है, सहज राज योग है। जिस योग के आधार से ही ज्ञान को स्पष्ट रीति हम समझ पाते हैं। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे कोई नया आए उसे बाबा के चित्र के आगे खड़ा कर दो और जब तक उसे बाबा पर निश्चय नहीं होता तो अगले चित्र पर नहीं पहुंचो। माना पहले जो हमारी बुद्धि में पक्का हो कि योग ही हमारा मुख्य विषय है, अगर बाबा का परिचय उसे समझ में आ जाएगा, बाबा पर निश्चय हो जाएगा, तो अन्य ज्ञान की बातें जो भक्ति मार्ग में कुछ भिन्न हैं, वह भी उन्हें समझ में आने लगेंगी। इसीलिए बाबा ने कहा योग अगर अच्छा है तो ज्ञान समझ में आएगा। योग यथार्थ रीति कर रहे हैं तो धारणा जीवन में होगी ही, ये प्रूफ दिखाई देगा। और यदि योग अच्छा होगा तो सेवा पर तत्पर रहेंगे ही। तो अन्य सभी विषयों का जो आधार है, मुख्य है, वो योग है। इसलिए बाबा हमेशा योग की बात करते हैं और हम मधुबन में भी आते हैं योग की गहन अनुभूति के लिए। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ विधियाँ सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करने के लिए में दिए जाते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य है केवल मात्र अच्छे योगी बन जाए, उससे ही होता है। चाहे दादियां हमें रूहानी ईश्वरीय पालना देती हैं, चाहे हमारी स्थूल में पालना शुद्ध भोजन द्वारा होती है, सूक्ष्म पालना ज्ञान के द्वारा होती है, रूहानी स्नेह से होती है, लेकिन इन सब का मकसद कि हम अच्छे योगी बन जाएं। बाबा ने हम सभी को ये बात बताई है कि योग ही एक ऐसा आधार, एक ऐसा माध्यम है जिससे पिछले 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो सकते हैं और भविष्य 21 जन्मों के लिए हम कमाई भी जमा कर सकते हैं। टोटल 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग जो संगम युग पर होती है, तो योग के द्वारा हमारी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, अच्छी शूटिंग होती है। जैसी रिकॉर्डिंग हो जाएगी अभी, वही पूरे 84 जन्म फिल्म हमें देखनी पड़ेगी। तो बाबा हम बच्चों को ये ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चे योगी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। भले शुरू में हमें इस बात को याद दिलाया जाता है, कई नई भाई बहने भी आते हैं कि योगी जीवन के चार नियम हैं, वो भी सभी को याद रहते हैं और सुनाते हैं सभी को। जो पहला नियम योगी जीवन का समझते समझाते और पालन करते हैं वह ब्रह्मचर्य है। लेकिन बाबा ने साथ में हमें क्या कहा, ब्रह्मचारी भी और ब्रह्माचारी भी। ब्रह्मा के आचरण पर चलना ये हमारा पहला नियम है योगी जीवन का।
जैसे आज भी
कितने ब्राह्मण बाबा के बच्चे जिन्होंने बाबा की अलौकिक जीवन कहानी की वो पुस्तक को पढ़ा है, जिसका एक भाग भी है, दूसरा भाग भी है, जिसमें स्पष्ट इस बात को बताया है कि बाबा ने हर कर्म को किस तरीके से किया। बाबा के जीवन में भी अनेकों प्रकार की समस्याएं, बाधाएं आई, लेकिन बाबा ने हर परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति के आधार से कैसे सहज पार किया। अगर हम ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी की बात करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया, पूरी दिनचर्या सुबह से रात्रि तक बाबा की कैसे सफल हुई, एक एक श्वास बाबा ने कैसे सफल किया, उसका हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारी परदादी जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री, अपने अनुभव में एक बार बता रही थी कि बाबा ने कभी भी अपने जीवन में क्रोध नहीं किया। देखिए, आज इस बात को सुनकर हैरानी होती है ब्राह्मणों को भी कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण जो सूक्ष्म में या बाहरी रूप में सतो प्रधान या तमो प्रधान रूप में क्रोध न करता हो, जिसमें बाबा ने भी क्रोध का अंश और वंश हमें सब समझा दिया है, लेकिन बाबा ने अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। और उस बात को जब दादी बता रही थी, तो उन्होंने उस बात को बताते हुए कहा कि जब बहुत छोटी बच्ची थी और बाबा का व्यापार क्योंकि हीरे जवाहरात का था, तो एक पैकेट में कुछ हीरे रखे हुए थे, पुड़िया बना करके रखी हुई थी, और निर्मल शांता दादी जब बच्ची थी तो अपनी सहेली को लेकर के उसे कंचे समझकर लेने के लिए चली गई। उस समय उन्हें हीरों के मूल्य का ज्ञान नहीं था, केवल कंचे उसे समझती थी। तो उन्होंने एक बॉल ली और बॉल उस पुड़िया पर मारी ताकि पुड़िया गिर जाए, और गिर गई और वो हीरे बिखर गए। तो कुछ हीरे उन्होंने उठा के फिर पुड़िया में रखे, वहीं रख दिए, लेकिन कुछ हीरे उसकी सहेली ने भी और उन्होंने भी अपने पास रखे और चले गए। बाबा उस समय उपस्थित नहीं थे, लेकिन जो ही बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि बाबा की परखने की शक्ति भी बहुत अच्छी थी, और बाबा ने देखा, बाबा ने पूछा पार्टनर से कि कौन आज आया था, तो पार्टनर कहता कोई नहीं। कोई नहीं क्यों कहा, क्योंकि बच्चे तो आते ही जाते थे, तो घर के ही थे, बाहर का कोई नहीं आया था। तो बाबा ने देखा उस पुड़िया को, देखा ये तो डायमंड कुछ कम है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि डायमंड बच्चे उठा के ले गए। क्रोध आना भी आज के टाइम पर भी हम सोचेंगे तो नेचुरल है, आएगा ही ना, इतनी महंगी चीज हो जाएगी या बच्चे ले जाएंगे, बच्चों को समझ नहीं है तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी बाबा ने क्या किया, बाबा बहुत युक्ति से चलते थे। बाबा उस बच्ची की जो सहेली थी उसके घर पहले चले गए, और सहेली को जाकर के बोला, वो निर्मला ने जो तुम्हें कंचे दिए हैं वो दे दो। सहेली सोचने लगी कि शायद मेरी सहेली ने बता दिया है, उसे पूछा गया होगा, उसने बता दिया, तो तुरंत उसके पास जो कंचे रखे थे ला के बाबा को दे दिए। और बाबा उन कंचों को लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचे और उसको दिखाते हुए बोले कि ये जो ऐसे जो कंचे तुम्हारे पास है ना, ऐसे वो तुम मुझे दे दो। अब उसको क्या लगा कि मेरी सहेली ने तो बाबा को सब बता दिया है, उसने भी ला करके वो कंजे दे दिए। क्या हुआ
तो बाबा को
कि क्रोध भी नहीं करना पड़ा और वो चीज वापिस भी आ गई।
तो बाबा ने हम लोगों को सिर्फ ज्ञान,
लेकिन हम बच्चे जो पुरुषार्थी अब हैं, लेकिन बाबा की श्रीमत है क्रोध नहीं करें, तो फिर भी क्योंकि हम बार बार ये सोचते हैं शायद इसके बिना काम नहीं चलेगा, या चाहते हुए भी फिर थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने क्रोध के बिना भी अपने कार्य किए और उसमें सफल हुए। तो आप पाएंगे बाबा ने जो पहला नियम हमें बताया ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, तो हम सभी का कर्तव्य ये है कि बाबा ने जिस कर्म को जिस तरीके से किया उसके बारे में हम जानकारी रखें, चाहे अध्ययन करें, चाहे बड़ों से पूछें, या जब हमारी दादियां बाबा के विषय में सुनाती हैं तब उसको अच्छी तरह सुने, क्योंकि उन चरित्रों के द्वारा हमारा चरित्र बनता है।
गलत लोगों को
दूसरा बाबा ने नियम हमें शुद्ध अन्न की बात कही योगी जीवन के लिए। हम सभी बहुत जल्दी जल्दी ये नियम सुना दिया करते हैं क्लास में, जब भाई बहनों से पूछते हैं क्या नियम है योगी के, तो हम जल्दी से सुनाते हैं दूसरा नियम शुद्ध अन्न है। लेकिन बाबा ने जिस शुद्ध अन्न की बात हमें कही, क्योंकि अन्न से मन वैसा बनता है, तो अन्न की परहेज भी हम करते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कई ब्राह्मण इस बात में बहुत ढीले हो जाते हैं, और ये इस बात को कहते हुए हम सुनते हैं बहुत भाई बहनों को कहते दीदी बाहर जाकर चाय तो पीनी पड़ती है, कितने समय तक हम खाना नहीं खाएंगे, कितने समय तक ऐसे चलेगा, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम खा लेते हैं। कई तो ब्राह्मण किसी कंपनी का नाम बोलते हुए बोलते हैं ये कंपनी तो बहुत अच्छी है इसलिए इसका तुम खा ही सकते हैं। लेकिन बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इस कंपनी का खा सकते हैं और इसका नहीं खा सकते, भले फर्क है कंपनीज में, कई थोड़ी सी शुद्धि इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पवित्रता की शुद्धि वह तो संसार में किसी के पास है ही नहीं। जिस शुद्धि की बात बाबा कर रहे हैं वो तो कहीं संभव ही नहीं है सिवाय बाबा के बच्चों के। तो इसलिए जो शुद्ध अन्न की बात बाबा ने कही कि हम शुद्ध हाथों के द्वारा बना हुआ भोजन बाबा को स्वीकार करा के, और जब बाबा को स्वीकार भी हो जाए और हमारे सामने भी जब भोजन आए तब भी हम भोजन को दृष्टि दें, उसे पवित्र बनाएं और बाबा की पवित्र याद के साथ खाएं, तब कहेंगे वो भोजन शुद्ध है। यदि हमने बाबा को भोग नहीं स्वीकार कराया वह भी शुद्धि नहीं हुई, यदि हमारे सामने आया तो भी हमने दृष्टि देके उसे पवित्र नहीं बनाया वह भी शुद्धि नहीं है, और यदि बाबा की याद के बिना खा लिया तो बाबा कहते बच्चे जो खिलाने वाला है उसको खिलाकर नहीं खाते तो बाबा का बहुत कड़ा शब्द है कि वो चोर हो जाते हैं,
वो जितना
खिलाने वाले दाता को ही ऑफर नहीं करते। तो हम जो योगी जीवन की बात कर रहे हैं वो तभी संभव है जो ये नियम शुद्ध अन्न का वो हमारा पक्का हो, कुछ भी हो जाए, चाहे हमें त्याग करना पड़े, चाहे फल से गुजारा करना पड़े, वो बहुत अच्छा है, पर हम शुद्ध भोजन का ही सेवन करेंगे, ये पक्की प्रतिज्ञा दृढ़ता हो। ऐसे बाबा ने तीसरा नियम हमें सिखाया, कौन सा? दैवी गुणों की धारणा। क्योंकि बाबा ने बताया कि सत्संग भी करें और दैवी गुणों की धारणा भी करें। अब सत्संग में कितने बाबा के बच्चे आज ये सोचने लगे, हमारे मोबाइल पे तो मुरली आ ही जाती है, हमारे घर में टीवी है उसमें मुरली आ ही जाती है, इसलिए सेवा केंद्रों पर हम क्या करेंगे, चलो संडे को केवल चले जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा प्रतिदिन सत्संग करना है। मोबाइल से टीवी से हमें अच्छा संग नहीं मिलेगा।
सुबह 5:30 बजे
सत्संग की बात नियम बाबा ने कही कि प्रतिदिन सेवा केंद्र पर जाना ही है। जो पवित्र शुद्ध वाइब्रेशन वहाँ मिलते हैं, ब्राह्मणों का जहाँ संगठन होता है, स्नेह के वाइब्रेशन होते हैं, और बाबा ने खुलवाए हैं वो सेवा केंद्र।
5:30 बजे
यदि बाबा को नहीं चाहिए कि हम इन माध्यमों से ही मुरली सुन सकते हैं या संग कर सकते हैं, तो बाबा को डायरेक्शन में चेंज लानी पड़ेगी। लेकिन बाबा ने अभी तक वैसा कुछ चेंज नहीं लाया, तो इसका अर्थ क्या है कि हमें सेवा केंद्रों पर, मधुबन में बड़े सेंटर्स पर ईश्वरीय संघ के लिए जाना भी अनिवार्य है। जब संघ करेंगे आप देखेंगे हमारे साथ वाला पुरुषार्थी इतना अच्छा पुरुषार्थी, उसका इतना अच्छा अनुभव, ये सुन करके देख करके भी हमको प्रेरणा मिलती है। और बाबा ने हमें ये भी बात बताई है कि ब्राह्मण परिवार ही सत्युगी परिवार बनने वाला है। बेस क्या है?
स्वयं भगवान को पाने के लिए आए।
बाबा ने बताया सत्युगी परिवार का बेस अभी संगम युगी परिवार है, और जहाँ हम एक दूसरे से सदा मिलते हैं, तो यहाँ सेवा केंद्रों पर या बड़े संगठन में हमें बुलाया जाता है, वहाँ मिलना भी बहुत आवश्यक है, भले साधन कितने भी हों। तो इसलिए सत्संग का जो नियम बाबा ने बताया, ऐसा नहीं शुरू के लिए वो नियम है और आज के लिए वो नियम नहीं, आज भी वही नियम है, अटेंशन रखना है। और वैसे ही प्रतिदिन किसी न किसी गुण की धारणा पर अटेंशन देना है, क्योंकि शब्द हमारे ज्ञान युक्त भले हो गए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के शब्दों से उस व्यक्ति की परख नहीं हो सकती। यूं तो आज के बहुत सारे महात्मा लोग बड़े अच्छे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और हमारे पास सत्य ऊंचा ज्ञान है, हम उन्हीं सत्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रोज रोज सुनते हैं, तो वो शब्द हमारी जबान पर पक्के हो गए हैं। पर केवल ज्ञान सुनाने से ही ये पता नहीं लग जाता कि हम देवता बनने वाले हैं। देवता बनना जो लक्ष्य है वो हमारे लक्षणों से पता लगेगा। तो किसी भी व्यक्ति की परख उसके व्यवहार से, उसके जीवन से हुआ करती है। तो हम सभी को इन चारों नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। और बाबा ने हमें ये बताया कि जब आप योगी जीवन वाले हो, केवल योग में बैठने वाले नहीं, 1-2 घंटे के लिए नहीं, योगी जीवन है, तो योगी जीवन के लिए अटेंशन कुछ बातों का रखना वो आवश्यक है। भले हमारा बेहद का बड़ा परिवार है, सेवाएं भी बेहद की हैं, कार्य व्यवहार भी बहुत बेहद का है, लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअल योगी हूँ। सबके साथ रहते भी मैं एकांतवासी, एकांत प्रिय बन सकती हूँ, यदि मुझे ये याद रहता है कि मुझे योगी बनना है। बाबा ने हमें बताया कि योगी बनने के लिए बाहरी सब बातें जो दुनिया की इन्फॉर्मेशन है, एक कलयुगी दुनिया के इन्फॉर्मेशन है, दूसरी संगम युगी दुनिया की भी इन्फॉर्मेशन है। तो कई लोग उन्हीं इन्फॉर्मेशन को ही इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन यदि मुझे योगी बनना है तो बाहर की दुनिया से जितना अपने आप को हम अंतर्मुखी बनाते हैं उतना योगी जीवन बना पाते हैं। ध्यान रखें, संगठन में हम आते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, लें एक दूसरे का अनुभव सुने, परंतु एक दूसरे की पर चिंतन में, निंदा चुगली में या इधर उधर की फालतू बातों में अपनी बुद्धि को न लगाएं। यदि मुझे अच्छा योगी बनना है तो, क्योंकि इन सब चीजों से मेरा योग टूटता है जो मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य योगी बनना है तो अंतर्मुखी बने, अपने आप को देखें, अपने लिए कमाई जमा करें। यहाँ हम इसी लक्ष्य के लिए आते हैं। बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बन जाओ, इस शरीर में रहते शरीर धारियों से व्यवहार करते भी, बातचीत या लेन देन करते भी मुझे बनना अशरीरी है। बार बार बाबा ने हमें ड्रिल की बात याद दिलाई है कि बच्चे बीच में एक मिनट के लिए भी टाइम मिलता है, कछुए मिसल अपने आप को समेटो और एक मिनट के लिए भी टाइम मिला बाबा के पास पहुंच जाओ, बाबा से शक्ति लेके फिर आ जाओ, फिर दूसरा कार्य किया, फिर अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाओ, फिर आ जाओ। बार बार ऐसे ड्रिल करो। जितना हम अशरीरी बनते हैं और जितना बुद्धि को बार बार परम धाम ले जाते हैं, ये अभ्यास करते हैं, तो उतना हम अच्छे योगी बनते जाते हैं। और योगियों का जो प्रमाण है, बाबा ने कहा योग से विकर्म विनाश होते हैं, और हम जितने पुराने योगी बनते जा रहे हैं, इसका अर्थ उतना ज्यादा हल्कापन हमारे जीवन में आना चाहिए। कार्य बढ़ेंगे पर हल्कापन बढ़े, क्योंकि विकर्म विनाश हो रहे ना, विनाश हो गए, मेरा खाता क्लियर हो गया, तो फिर हल्कापन महसूस होना चाहिए। किसी भी प्रकार का बोझ जो हम क्या क्यों कैसे करें में समझते हैं, लेकिन उन सब बोझ से हम फ्री हो जाएं, ये योग का प्रमाण है। हम देखें कि मुझे हल्कापन महसूस होता है, मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ रही है, मेरी शक्ति दिनों दिन बढ़ रही है, ज्ञान की हर बात का क्लेरिफिकेशन है, किसी भी चीज में क्यों क्या या किसी से नाराज ये सब तो नहीं है, क्योंकि ये सब क्यों है, क्योंकि मेरा योग कम है। योग अच्छा है तो नाराज की किसी से बात ही नहीं, क्योंकि पता है हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना संस्कार है, हर आत्मा की अपनी समझ है, वो उसी अनुसार कार्य करेंगे। पर मुझे तो साक्षी होकर हरे के पाठ को देखना है और मुझे आनंदित रहना है। पाठ हरे का देखें, हर एक अलग अलग तरीके से पाठ बजा रहा है, सब एक जैसे तरीके से पाठ बजाएं तो शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा। किसी रामलीला में सारे राम बन जाएं, राम लीला होगी ही नहीं, राम की लीला को समझेंगे कब, जब राम के सामने अगेंस्ट में कोई हो ना। वैसे ही सब परिवार के अंदर, चाहे हद का या बेहद के परिवार के अंदर वैरायटी तो है, संस्कार में विभिन्नता है, लेकिन हमें हरेक के पार्ट को देखते हुए साक्षी रहना है और उस स्थिति का आनंद लेना है। मुझे आनंदित रहना है बाबा के प्यार के आधार से, क्योंकि जब मैं उस रस में हूँ तो इस रस से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ठीक भले है मेरे सामने, पर मेरी बुद्धि तो वहाँ लगी हुई है। जब मेरी बुद्धि वहाँ है, मेरा रस वहाँ, मेरा कनेक्शन वहाँ, मेरा ध्येय वही है, तो ये सब तो साइड सीन्स है, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में रहना है, जब तक जीना है तब तक सबसे निभाना भी है। परंतु मेरी सच्ची कमाई तो एक बाबा की याद से ही होगी। तो हम सभी यहाँ मधुबन बाबा के बेहद घर में आए हैं, इस लक्ष्य को और पक्का रखें कि हमारा योगी जीवन है, ये हमारा सफर है योग का। योग के सफर में हर सेकंड उपलब्धि है, हर सेकंड प्राप्ति है, हर सेकंड क्वेश्चन की नहीं है, हर सेकंड खुशियों की है। तो मेरा खुशियों का खजाना भरपूर और बढ़ता जाए और मेरे जीवन से मालूम हो कि मैं योगी हूँ। जैसे किसी महात्मा की ड्रेस से, किसी के गेरुए कपड़ों को देखकर समझते कोई महात्मा है, ड्रेस से, जैसे आज हमारी बाह्य ड्रेस से समझते ब्रह्मा कुमारी, ये ब्रह्मा कुमार हैं, पता लगता है लोगों को। और आज ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी बाबा कितना मान दिलवा रहे हैं, समाज जो पहचान रहा है इतना मान दे रहा है। चाहे किसी भी स्थान पर आप चले जाएं, लेकिन लोगों की आंखें तरसती, अच्छा ये ब्रह्मा कुमार, अच्छा ये ब्रह्मा कुमारी, अच्छा ये वो जो टीवी में आते हैं वो ही है ना। देखिए बाबा हमें प्रत्यक्ष कर रहा है, भले आज भी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, लेकिन बाबा हमारी त्रुटियों को भी छिपा कर हमारी विशेषताओं को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। लेकिन रियल में बाबा हमसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं? बाबा हमसे अपेक्षा रख रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, मेरे एक एक बच्चे के द्वारा मैं दिखाई दूं, हम बच्चों के द्वारा बाबा दिखाई देने लगे। बाबा हमें प्रत्यक्ष कर रहा है और हमारे दिल की तमन्ना भी क्या है, हमारे जीवन द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो। ऐसा दिल का सच्चा प्यार वो बाबा से हो, एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही लगन। जैसे किसी चीज की में धुन होती है, कोई बड़ी जिम्मेवारी का कार्य हो तो धुन लग जाती है, बस ये करना है ये करना है। वैसे ही हमें धुन हो कि मुझे अपने अलौकिक जीवन द्वारा, मुझे अपने योगी जीवन द्वारा अपने बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इस लक्ष्य को लेकर के जब चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से सब चीजों को समेटते जाएंगे, कार्य करेंगे भी सब समेटते जाएं, तैयार रहें वापिस चलने के लिए। ऐसे धुन लगा लें, बस तैयार होके मुझे जाना है बाबा के पास। ऐसे ही जबरदस्ती बाबा ना ले जाए, जैसे पढ़ाई के समय वो जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं, टाइम निश्चित होता है, टाइम पूरा हो गया तो पेपर छीन लेते हैं। ऐसे बाबा हमको ऐसे जबरदस्ती ना ले जाए, पहले से हम संपूर्ण तैयार हो जाएं बाबा को, बाबा हम तैयार हैं, हमको आप ले ही चलो। ऐसी तैयारी हम अंदर ही अंदर में ही करते रहे, ऐसी शुभ भावना हम आप सभी के लिए रखते हैं। ओम शांति।
कोई भी सिचुएशन है, परिस्थितियां है, हमको डगमगावे नहीं।